अब इतना समय नहीं है, नहीं तो बहुत सुंदर सुंदर बातें इसमें उन्होंने कहा है, विशेष करके जीव गोस्वामी का कोट करके उन्होंने दिया है कि आज कोटेड द लैंग्वेज ऑफ रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर गुरु तत्व. बट वी हैव नो टाइम नाउ, वी विल बिगिन अवर व्यास पूजा. दिस इज ऑल्सो एसेंशियल, बट दिस इज मोर एसेंशियल व्हाट वी आर डूइंग. यदि ये नहीं रहे तत्व ज्ञान की ये जो बातें हैं नहीं है, हम समझते हैं कि यही सबसे श्रेष्ठ, गुरु महाराज आज बड़े प्रसन्न होंगे कि आज ये सब लोग गुरु तत्व की आलोचना कर रहे हैं. यही व्यास पूजा हम लोगों ने एक तरह से हम लोगों ने की, सभी लोगों ने. अब ऊपर से भी जो फॉर्मेलिटीज है उसको भी देना, उसको भी फॉर्मेलिटी मत समझो. अभी जो पुष्पांजलि दी जाएगी, पुष्प को अपना हृदय बनाना, यू शुड नो द मूड इज दैट अवर हार्ट इज लाइक लोटस फ्लावर, वेरी स्मूथ, वेरी फ्रेग्रेंट, वेरी स्वीट, वेरी मेलोडियस, एंड आई एम टेकिंग माई हार्ट एज ए लोटस एंड गिविंग इट इन द लोटस फीट ऑफ आवर गुरुदेव. ये समझ करके करना चाहिए. मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं, हमसे बहुत सी त्रुटियां हो गई, हम लोग अनकंडीशनली सरेंडर नहीं हो सके, किंतु आज प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी जो कुछ त्रुटियां थी, दोष था, उसको दूर करके आज से मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूं कि गुरु जी की मनोभिलाषा पूर्ण करेंगे और उनके अनुसार में हम चलेंगे. जैसे जैसे उन्होंने शिक्षा दी है वैसे करें. टुडे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग to give Pushpanjali in the lotus feet of our Gurudev, that we promise that I will, what I will do for pleasing my Gurudev. यदि ऐसी होगी तो हमारी पुष्पांजलि हो जाएगी, अन्यथा पुष्पांजलि नहीं होगी. इसलिए अब हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करते चलेंगे और थोड़ा सा यहाँ अर्चन करेंगे और थोड़ा सा हम आरती कर देंगे. इधर ठाकुर जी का भोग भी लग रहा है, अब देर नहीं होगा. कितना 12 बज चुका है.
नमस्कृत वरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे. आज हम लोगों का सवेरे से ही व्यास पूजा का कार्यक्रम चल रहा है. सवेरे हम लोगों ने बतलाया था महाप्रभु जी से लेकर, महाप्रभु जी क्या ब्रह्मा से ही लेकर और आज तक भजन का मूल गुरु निष्ठा बतलाया गया. गुरु जी का इतना महत्व है कि कभी 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 हम लोग भूल जाते हैं और गुरु जी के दिए भी जो चीजें हैं जिन्होंने हमको दिया है उसकी तुलना जागतिक चीजों से हम दे देते हैं और उसी में बंधित होते हैं. गुरु जी की अप्राकृत जो अनुदान है, उनका जो दान है, उसको हम समझ नहीं पाते. पाक्षिक चीजों से हम उसको मापना और तौलना चाहते हैं. जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो गुरु जी की दी हुई जो चीज है उससे कोई भी संसार की तुलना हो सकती। भगवान की जितनी करुणा है वो सब एकत्रित होकर के मूर्ति के रूप में गुरु जी हैं, इसी को समझो। इसलिए गुरु भगवान को यदि करुणा भी करनी होती है तो गुरु के माध्यम से ही करते हैं, वैष्णवों के माध्यम से करते हैं, भक्तों के माध्यम से करते हैं, खुद नहीं करते, मर्यादा नष्ट नहीं करते हैं। अभी हम लोग गुरु तत्व के संबंध में विभिन्न वैष्णवों से हम लोग सुनेंगे, एक ही तरह के विचार ठीक नहीं है। थाली में तरह तरह की चीजें होंगी ना तो उसका आस्वादन रहता बढ़ता है, खट्टा मीठा चारपरा तीता मधुर अम्ल, अम्ल में भी तरह तरह के, मीठा में भी तरह तरह का। तो पहले हमारे श्रीमान रसानंद ब्रह्मचारी जी आपको गुरु तत्व के संबंध में
नित्यानंद प्रभु जी ने
व्यास पूजा की, उन्होंने गौड़िया वैष्णव में सबसे पहले नित्यानंद प्रभु जी को व्यास पूजा करने के लिए महाप्रभु जी ने कहा, महाप्रभु जी व्यास पूजा कर ले। श्रीवास जी के अंगन में व्यास पूजा हो रही, सब लोग कह रहे हैं कि व्यास पूजा कीजिए उनके लिए, नित्यानंद प्रभु के लिए। किंतु वो नहीं कर रहे, हूं कर रहे। जब महाप्रभु आए तो उनके गले में माला डाल दी, तो इसका वो तात्पर्य बतला रहा है। और ऐसा ही तात्पर्य है, नित्यानंद प्रभु जी ने महाप्रभु जी के गले में क्यों डाल दिया? व्यास पूजा हो रही है, व्यास जी की पूजा हो रही है, और व्यास जी अखंड एक तरह से गुरु हैं, भगवान भी हैं, और वही महाप्रभु जी कहे तुम व्यास पूजा करो, तो उन्होंने महाप्रभु जी के गले में डाल दी माला। क्यों डाल दी? व्यास का कर्तव्य भगवान की पूजा करना है, इस चीज को समझो। व्यास क्या करता है, गुरु क्या करेगा? कृष्ण की पूजा कराएगा, करेगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी अखंड गुरु तत्व होने पर भी उन्होंने व्यास की पूजा नहीं करके व्यास के जो मूल व्यास हैं उनके भी गुरु हैं, मूल केंद्र बिंदु हैं वो कृष्ण स्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु की पूजा की। इसके द्वारा कोटि कोटि व्यास और कोटि कोटि सब गुरु और सबकी पूजा हो गई, ये चीज उनको दिखलाना। गुरु अपनी पूजा ग्रहण करने के बदले क्या करता है? भगवान की पूजा करता है और कराता है, इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो लोग अपनी पूजा में प्रतिष्ठा में लगे हुए गुरु है ही नहीं है, गुरु तत्व से वो च्युत हैं, इसलिए व्यास जी को कहिए, नित्यानंद प्रभु जी को कहिए, बलदेव जी को कहिए, ये सब कृष्ण की पूजा कर, महाप्रभु जी की पूजा करते हैं, यही व्यास पूजा का मूल रहस्य है। व्यास जी के हम ऋणी इसलिए हैं कि कृष्ण को उन्होंने जनाया, कृष्ण की सेवा को इस जगत में दिया, इसलिए वो पूज्य है। गुरु जी के संबंध में दो एक बातें मैं बताता हूं, इसके बाद में फिर ये लोग कहेंगे। अभी गुरु जी के बाल्य चरित्र के संबंध में इसने टच किया, शायद लोग समझे कि नहीं, इसलिए फिर से उसको मैं बतला रहा हूं। गुरु जी महाराज जी 12-14 वर्ष की उम्र में या 15 वर्ष की उम्र में जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय इनके पिताजी देखभाल नहीं लोगों का बच्चों का करते थे, इनके इनकी मैया देखती थी। मैया जमींदार की लड़की थी, बड़ी शासन करती थी, बच्चे अच्छे निकले, इसलिए वो कहती थी शाम के बाद में कोई भी घर से बाहर नहीं रहेगा, शाम के पहले होते ही सब लोग घर आ जाएंगे, इधर उधर ना घूमे। एक दिन गुरुजी को उन्होंने देखा, जैसे ये रात में 8-9-10 बजे आए, बस लठिया लेकर के दरवाजे पर खड़ी थी, आएगा तो वहीं उसे हम पूछेंगे कहाँ था तू। जंग घर में आए, उनका हाथ पकड़ लिया और लठिया उठा लिया हाथ से, मालूम अभी तक तू कहाँ था बतला। तो गुरु जी निर्भय होकर के चुपचाप खड़े रहे, उत्तर कुछ नहीं दिया। तो उनकी शंका और हो गई, जब बोल नहीं रहा था यह जरूर कुछ गड़बड़ है, जब जल्दी बतला मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी, तुम्हारा पैर तोड़ दूंगी, फिर कभी तुम ऐसा नहीं करेगा। तो जब बार बार पूछने लगी तब उन्होंने बतलाया। क्यों बतलाया, पहले क्यों नहीं बतला दिया? देखा कि अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अपनी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति क्षण क्षण में मरता है, इसलिए नहीं बतलाया। मैया कहने में तो मैया तू हमें मार ले, मैं इसलिए मैं रुक गया रात में कि पास ही में एक गरीब विधवा है, उसको कपड़े खाने के लिए कपड़े नहीं है, पहनने के लिए और कपड़े नहीं है, 4 दिनों से कुछ नहीं मिला उसको खाने के लिए। हमको पता लगा दिन में जो वो बुढ़िया कुछ नहीं खाया, उसके पास में कुछ कपड़े नहीं है और ऊपर से वो रोगी हो गई है, बीमार हो गई है, इसलिए मैं गया उसके पास में, देखा जैसे उसके पास में कुछ खाने के लिए नहीं है, 4 दिन तक खाया नहीं और बड़ी बीमार है। मैया मैं क्या करूं, वो हमारे तुमने जो पैसे इतने दिन दिए थे वो मैं संग्रह करके रखा था और मोहल्ले से जाकर के अच्छे अच्छे लोगों से भीख मांगा मैंने, तो कुछ अन्न चावल और कुछ खाने के लिए संग्रह कर दिया और दो एक कपड़े किसी से मांग करके मैं उसकी व्यवस्था करने में लग गया, नहीं तो आजकल मैं वो बूढ़ी मर जाती। सुनते ही मैया का लाठी गिर गया हाथ से, आंख से आंसू आ गए और बच्चे को गोद में ले लिया। फिर कभी उनको शासन नहीं किया और भाइयों को शासन किया नहीं किया। बचपन से ही साधु संतों में दया होनी चाहिए, जिसका हृदय दिन दुखियों को देख करके नहीं पिघलता वो बड़े होकर के क्या पिघलेगा। गुरु का भी यही लक्षण है, जब देखें कि भगवान को भूल करके ये जगत के जीव बड़े दुखी हुए हैं, जन्म जन्मांतर से माया के चक्कर में पड़ रहे हैं, इसलिए उनका हृदय द्रवित हो जाता है और उनके लिए सर्वस्व उनका सब समय उसी में जाता है। एक समय जब गुरुजी के पास में ये आए तो गुरुजी के पास में चिट्ठी आई, ये तुम्हारी मैया बहुत बीमार है और पत्र दिया है तुम्हारी मैया ने, ये बेटा विनोद तुम एक बार चले आओ, अंतिम बार तुम्हारा दर्शन कर ले। तो ये नहीं गए तो गुरुजी के पास में कहा, जे आप उनके गुरु हैं, मैं अंतिम में सांस गिन रही हूँ, आएगा तो मैं साथ ही साथ सांस छोड़ करके चली जाऊंगी, उसी के लिए रुकी हूँ, आप उसको कुछ समय के लिए एक दिन के लिए भी हमसे भेज करके जाए, आप भेज दीजिए। गुरुजी ने इनको बुलाया, बिनो सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी मैया का पत्र आया है, तुमको अभी तुरंत जाना चाहिए, चले जाओ। उन्होंने बतला दिया तुम्हारी मैया बहुत बीमार है और एक बात देखना चाहती, ले जाओ।
अभी अभी तैयार होकर अभी चले जाओ। तो वो वहां से चले आए और एक घर में छिप रहे, गए नहीं। शाम जब हो गई, आरती हो गई, अंधकार हो गया, तो प्रभुपाद जी ने परमानंद ब्रह्मचारी जी से, अपने प्रिय एक और शिष्य थे, उनसे कहा, देखो तो भाई विनोद कहीं, विनोद को कहा था घर जाने के लिए, इसकी मैया बीमार है, वो गया कि नहीं जरा पता लगा लो। तो वो जाकर के कहा, यार वो तो घर में बैठा हुआ है, अंधकार घर में, कोने में, दीवार के तरफ में, उसका मुख है इधर में पीठ के हुए और बैठा है। कहे जाओ उसको बुला लो। मुश्किल से बुला करके उनको लाया गया गुरु जी के पास में। अब तू गया नहीं, हमने कहा था कि जाओ मैया से भेंट कराओ। तो उन्होंने कहा, जी प्रभु आपने तो आदेश दिया मुझे जाने के लिए, कोटि कोटि जन्मों के बाद में मैं आपके सी चरणों में आया, कोटि कोटि जन्मों के बाद में आया हूं और आपके सी चरण कमल मिले हैं, अभी मैं घर में जाऊं मैया के पास में, अभी जाऊं मैया के पास में। और मैया भी बहुत स्नेह करती थी और वो कहेगी जाते जाते, बेटा मैं तो मर रही हूं, मेरी बात रखना, अंतिम बात रख देना, तुम्हारे भाई लोग भी वैसे है, कुछ नहीं जानते हैं, तुमसे बड़े हैं कुछ नहीं जानते हैं, और तुम ही सब कुछ जानता, तुम जमींदारी को देखना और शादी करके घर में रहना, घर को संभालना, नहीं तो ये घर हमारा बर्बाद हो जाएगा। यदि मैया कहेगी तो उसकी अंतिम बात हमको जरूर माननी पड़ेगी, तो आपके चरणों से सदा के लिए मैं विजुक्त हो जाऊंगा और आपकी सेवा से छुटकारा मिल जाएगा। ये संसार तो ये संसार बार बार आता है, बार बार जाता है, कोटि कोटि बार में बच्चा हुआ हूं, लड़का हुआ, पिता हुआ हूं, सब कुछ हुआ है, इसलिए मैं नहीं गया। अब आपको जो कुछ है आप मुझे दंड दीजिए, यदि बुरा किया है तो आप अकेले। तो प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आ गए, जो नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मौन हो गए, कोई कुछ शब्द ही नहीं बोले। बात ठीक है कि गलत है, संसारिक दृष्टि से ये तो ठीक मालूम पड़ता है, जो घर में जाओ मैया मर रही है, जाओ देखो, किंतु परमार्थिक दृष्टि से ये देखने से ये मालूम पड़ता है, कोटि कोटि जन्मों के बाद में हम लोग आए हैं, गुरु से बढ़कर के और कोई बंधु नहीं है। आज वो घर में चले गए होते हमारे गुरु जी, तो आज हम लोगों का किसी का जन्म हुआ होता है? कोई भी जो हजारों लाखों आदमी है, आज क्या होता है? कोई भी नहीं आता। इसलिए ये लोग परिकर हैं भगवान के चरणों के। जल्दी जल्दी करो, साधारण नहीं है, इनके एक एक जीवन का एक एक आदर्श है। एक समय प्रभुपाद जी ने इनसे कहा, एक व्यक्ति था वहां प्रभुपाद जी का शिष्य, वो प्रभुपाद जी ने उसको उत्साह देने के लिए कहा, ये तुम्हारे जैसे इस मायापुर में कोई भी गुरु सेवक या वैष्णव नहीं है, तुम पक्का वैष्णव है और तुम बहुत सेवा करते। उसको दिया उत्साह करने के लिए, वो आदमी ठीक नहीं था, सेवा नहीं करता था, किंतु उत्साह देने के लिए ऐसा कह दिया। अब वो चिट्ठी लेकर के अभिमान में फूल गया और सोचा कि सचमुच में मायापुर में कोई भी वैष्णव नहीं है, मैं ही, यदि वैष्णव हूं तो मैं। नरहरि प्रभु, विनोद ब्रह्मचारी जी और सब जितने लोग यहां हैं, हमारे जैसा कोई नहीं, इसलिए सबकी निंदा करना आरंभ कर दिया। प्रभुपाद जी सबकी निंदा करने लगा, हमने कब निवारण करने के लिए पिपिली का खंड मैंने मंगाया,
पिपली खंड कफ निवारित,
कफ को दूर करने के लिए एक औषधि होती है कविराज,
तो उसको लिया, सही है, कफ और बढ़ गया उल्टा। महाप्रभु जी ने भी ऐसा ही किया, ओ मैं ही संसार में आया संसार का कफ रोग दूर कर करके भगवान की सेवा में सबको लगाने के लिए, और ये अपराध से आज हम ही को, मैं सर्वेश्वर भगवान हूं और हमारी निंदा कर रहे हैं और हमको मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये इनको मारने प्लान बना रहे हैं, तो ये और मारेंगे, इसलिए संन्यास ले लिया। प्रभुपाद जी ने कहा जैसे नारे बांस न बजे बांसुरी, ये महापराधी है, ये किसी को वैष्णव नहीं मानता है। अच्छा ठीक है, बिनो सुनो सुनो सुनो, अभी इसको घर से बाहर कर दो, इसका सारा सामान जितना है बैलगाड़ी पर रख करके इसको बाहर कर दो, गुरु जी को प्रणाम करके, और हमारे गुरु जी चले आए और आकर के कहीं छिप गए, छिप गए, शाम हो गई। सुनो सुनो, दूसरे को बुलाए, देखो तो वो आदमी को, विनोद को मैंने कहा था जैसे उसको निकाल दे, वो वैसा ही है, वो कभी नहीं निकालेगा। देखो तो वो निकाला कि नहीं, वो गया कि नहीं, तो देखा जैसे उसको नहीं निकाला गया है, वो तो वहां पर है। कहा जैसे एक दूसरे को बुलाया, अभी हम कहते हैं उसको निकाल दो जाओ। उन्होंने गाड़ी लिया और उसका सब सामान रख करके और उसको कहा जल्दी से पढ़ो ना तो पीटेंगे तुमको। दो चार आदमी मिल करके उसको जबरदस्ती गाड़ी पर बैठा करके उसका माल साथ हटा करके उसको मठ से निकाल दिया। गुरु जी को दूसरे दिन प्रभुपाद जी बुलाए, तुमको मैंने कहा था जो उसको निकाल दिया, निकाला क्यों नहीं? गुरु जी हाथ जोड़ के बोले आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आज कह रहे हैं निकालने के लिए, आपसे कहेंगे क्यों निकाला? आप तो बड़े दयालु गुरु हैं ना, भगवान की सारी करुणा आप में है। अच्छा आप ही बतलाइए आपने उसको क्यों निकाला? सचमुच में आप में दया नहीं थी, निश्चित होकर के उसको निकाल दिया। गुरु कोई ऐसा कर सकता है? वो केवल विशेष बाध्य होकर के इसलिए किया, हाथ सड़ रहा है, गैंगरीन होने की संभावना हो गई, हाथ नहीं यदि काटा गया तो ये मर जाएगा, सारे अंगों में फैल जाएगा, सबका सबका सुधार हो सकता है, किंतु वैष्णव अपराधी का सुधार होना बड़ा भारी कठिन है। किंतु उसके लिए भी गुरु बहुत प्रतीक्षा करते हैं, शादी नहीं करते। एक समय में ये दूसरी दया का एक बतलाता हूं, हमारे मठ में पूज्यपाद बामन महाराज जी के एक चाचा जी थे, जेठा, उनका नाम था नरसिंह महाराज, भक्ति कुशल नरसिंह महाराज। नरसिंह महाराज जी समझिए जैसे कैसे थे, नरसिंह का अवतार, उनको लोग देखने के लिए आते थे, सचमुच के नरसिंह जी के बड़े सुंदर शांत और बड़े अच्छे थे। तो वो थोड़े किंतु बड़े तेजी आदमी थे। एक समय में किसी ने कुछ गड़बड़ किया, एक नया शिष्य आया और नया शिष्य बना, और वो कुछ काम हम नहीं कर पाता, कोई सेवा सेवा कुछ नहीं, वही हरिनाम करता और ऐसे ही बैठा रहता। तो कुछ बात ऐसी हो गई, नृसिंह महाराज ने कहा जो अभी तुम निकलो यहां से, आश्रम से निकल जाओ, और उसको निकाल दिया। वो गेट पर खड़ा हो गया अपना सामान लेकर के और वहीं पर रोने लगा। तो गुरु जी को किसी ने कह दिया जैसे वो एक आदमी को नृसिंह महाराज ने निकाल दिया और वो गेट पर रो रहा है, तो उन्होंने नृसिंह महाराज जी को बुलाया। दोनों की उम्र एक ही थी, किंतु नृसिंह जी महाराज जी गुरु महाराज को गुरु तुल्य मानते थे, और बड़े कड़े आदमी, राव था भीतर में एक और बाहर में एक, ऐसा नहीं, वैष्णव का जैसा चरित्र होना चाहिए ऐसे अंत बाहिर व्यवहार अमान्य मानव दोहर, ऐसा उनका व्यवहार, कड़े तो जरूर थे किंतु कोमल भी थे। उन्होंने गुरु जी ने उनको बुलाया और कहा देखिए आप सब लोगों ने मिलकर के मुझे आचार्य बनाया है। क्या आप सब कुछ कीजिए, सारी व्यवस्था सब कुछ आप लोग करेंगे, बस एक चीज हमारे अधीन रहने दीजिए, किसी को बाहर करना हो इसमें मेरी राय लेकर के करेंगे, और सब काम आप सब कुछ कीजिए, किंतु किसी को यदि बाहर करना है तो हमसे पूछ करके हमारी राय लेकर के सब कुछ करें। क्यों? बड़े दयालु होते हैं, थोड़ी सी बात के लिए किसी को हरि भजन से छुटकारा देना है, ये कर्तव्य नहीं है। साधारण आदमी इसको नहीं समझ सकता, जब इसको विचार करेंगे, गौर करेंगे, देखेंगे तब समझेंगे कि इसका क्या मत। उसका यदि निकाल दिया, एक चोर चोर करता है, जैसे एक बिच्छू है पानी में बह रहा है, एक साधु उसको उठाता है और वो डंक मारता है और वो हाथ से बिच्छू गिर जाता है, थोड़ी देर के बाद में फिर उसको हाथ में उठाया, फिर डंक मारा, फिर गिर गया, फिर उठाया, फिर गिरा, तो उसका साथी साधु कहता है, ये क्या कर रहा है, तुमको बार बार डसता है, काटता है और तुम उसको फिर लेता है। कहीं क्या करूं, ये अपने आदत से लाचार है, मैं भी अपने आदत से लाचार, ये काटना इसका काम है, ये इसे बाज नहीं आता और हमारी रक्षा करना हमारा धर्म है, इसलिए मैं कैसे इसको छोड़ दूं। ऐसे साधुओं का स्वभाव, यदि अपराध के अतिरिक्त और जैसा कोई पाप कर्म इत्यादि है, कोई दुष्टता है, तो सहज ही उसको नहीं छोड़ते, क्योंकि और भी डूब जाएगा। इसलिए गुरु बड़े दयालु होते हैं। बड़े सिंह विक्रम थे गुरु जी, किंतु दयालु इतने, यदि कोई कृष्ण कथा सुनने या प्रभुपाद का गुण गाने का लगते तो हाँ प्रभुपाद का करके ऐसे रोने लगते जो कोई वर्णन नहीं कर पाते, और उस समय में इतने जोर से रोने लगते जो हम लोगों को इशारे से कहते, मैंने तुम कुछ कहो, तब हम लोग कुछ कहते थे, ऐसे वो दयालु। प्रभुपाद जी का इतना गुणगान गुरु जी का करते, नवदीप परिक्रमा के समय में मायापुर जाने के बाद प्रभुपाद की समाधि में अद्भुत उनका जीवन चरित्र देखा हमने। ऐसे ही उनके जीवन चरित्र में बहुत सी छोटी छोटी बातों में भी अपूर्व सब सिद्धांत उसमें लगे, उनकी बातों में, उनकी लेखनी कहते हैं, आज विरह मांग, जब गौड़ीय पत्रिका निकली ना पहली बार, तो उसमें विरह मांगल्य सबसे पहला लेख लिखा है। यदि कोई सहज व्यक्ति होगा, सहृदय, आंखों से जरूर आंखें द्रवित हो जाएंगी, हृदय द्रवित हो जाएगी। आज विरह मांगल्य लिखते हुए मेरी लेखनी कांप रही है,
कुंठित पद, कुंठित मृदु पद अग्रसर रही है,
मंथर गति से कांपती हुई अग्रसर हो रही है, हृदय भी कैसा हो रहा है, हृदय भी कांप रहा है, कंपित हो रहा है, आज लिखनी बढ़ नहीं रही, जैसे बोलते समय में एकदम गला रुद्ध हो जाता, बोल नहीं पाते, ऐसी लेखनी भी लिखते समय में ऐसी बात। प्रभुपाद का गुण व्याख्या कर रहे हैं, प्रभुपाद कितने बड़े हैं कृष्ण लीला के परम मुक्त शिरोमणि, राधा जी की सखी नयन मंजरी है, नयन मंजरी मैंने क्या, राधा जी की नयन की शोभा है, और अनुग्रह करके इस जगत में आकर के संन्यास लेकर के त्रिदंडी स्वामी, श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम लिया, लोकाचार्य अपना नाम, इसने संन्यास का रख करके परमहंस परिवर्त का आचार्य अष्टोत्तरी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसा कहता है ना? ये तो दांभिक है, लोग कहते जैसे कि सावड़ी
कि सहजिया लोग कहते, अरे ये ऐसा परमहंस, ये अपने नाम के आगे ये अपने शिष्यों को कहता परमहंस कुल चूड़ामणि। तो गुरु जी कहते हैं कि ये लोग दया के पात्र हैं, मूर्ख हैं। क्यों हैं, कहां के ये, कहां ब्रज के गोलोक के भी अंतर सीमा, गोलोक का भी जो सार है वृंदावन, वहां पर राधिका जी की सहेली, और कैसी सहेली, उनकी राधा जी के नयन मंजरी हैं, और वो दैन्य करके उस जगत से इस जगत में मत्स्य जगत में उतर करके अपने को दीनता से परमहंस कह रहे हैं, परमहंस साधक का नाम है परमहंस। जैसे राष्ट्रपति देश बदल करके गांव में घूमकर कहता मैं चपरासी हूं या
चौकीदार,
यदि राष्ट्रपति कहता है कि मैं चौकीदार हूं तो ये खूब प्रशंसा की बात है, ना कि दीनता की बात है राष्ट्रपति। ऐसे ही स्वयं ये नैन मंजरी उस जगत के नित्य मुक्त होकर के राधा जी की प्रधान सहेली होकर के यदि परमहंस कह दिया तो ये बहुत नीचे की बात कही। इसलिए लोग नहीं समझते हैं गुरु जी की महिमा में बतला रहे हैं। हमारे जी गुरु जी कैसे हैं, कैसे हमारे गुरु जी ऐसे गुरु हैं, दूसरों का थोड़ा सा भी यदि देखते हैं कि दोष है, थोड़ा भी दोष कहीं किसी के अंदर में, साथ ही साथ में सुधार करने के लिए शासन करते हैं, बिना शासन के उसके ये दुर्गुण नहीं जाएंगे, इसलिए शासन करते हैं। ये दया का परिचय है, नहीं चाहते हैं कि उसके अंदर में कोई भी दोष रह जाए, तनिक भी रह जाए। ये क्या चीज है, ये दलता दयालुता है, किंतु साधारण शिष्य नहीं समझता है। ये किसका दोष है, गुरु जी का दोष है न शिष्य का दोष है। गुरु जी ने कहा शासन किया, अभी थोड़ा सा ठहर जाओ, दीक्षा अभी 2 दिन के बाद होगी। अच्छा ठीक है, मैं आपको दिखलाता हूं, क्या दिखलाता हूं, अब मैं यहां नहीं रहूंगा, कहां जाएगा, घर जाएगा, क्या करेगा, अब बाल बच्चे के साथ में रहेंगे, क्या करेगा, वहां लठिया खाएंगे अपनी स्त्री का पुत्र का। वाह, गुरु जी को कितनी बड़ी भारी सजा दे दी, गया कहां, गुरु जी की दया नहीं समझते हैं। गुरु जी चाहते हैं कि सब लोग निष्पाप निष्कलन, कोई भी दाग न रहे हृदय में कहीं, नहीं तो कृष्ण भक्ति इतनी बड़ी भारी चीज है, ये कैसे होगी। यदि सुदामा और कृष्ण गुरु जी से कहते गुरु जी हम आपकी स्त्री की बात नहीं मानेंगे, ये सर्दी का दिन वर्षा हो रही है और उसमें आधी रात के समय में आप हमको लकड़ी, अब मैं आपका लकड़ी बिनने वाला कोई नौकर छोड़े हूं, अरे मैं वासुदेव का लड़का, वसुदेव जी का लड़का, राजा का लड़का हूं, मैं ऐसा नहीं करता। कृष्ण ने कहा क्यों नहीं कहा, गुरु जी देख रहे हैं कि इसका अभिमान जो राजा कुल में होने का है, धन का बड़प्पन, ये सब अभिमान दूर हो जाए, तृणादपि सुनीच हो जाए। इसलिए कभी कभी गुरु शासन करता है किंतु शिष्य इस चीज को समझ नहीं पाता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं अपने गुरु के लिए, हमारे गुरु जी ऐसे कोमल स्वभाव के हैं, ये अपने शिष्यों का थोड़ा सा भी कोई दोष देकर के, भक्ति विरोधी बात देकर के, उसको शासन करके उस चीज को साथ ही साथ में दूर करना चाहते हैं। और कहते हैं यदि थोड़ा सा भी गुण देखते हैं तो लाख जीवाओं से उसको वर्ण करते हुए थकते नहीं है। थोड़ा सा भी गुण देख लिया शास्त्र जीवाओं से उसका गुण वर्ण करते हैं, आप देखो तो कैसा सुंदर लड़का, कैसा, हम लोगों ने इसका अनुभव किया है। एक बार मैं 5 रुपया भिक्षा करके सवेरे निकला घर से, मठ से, चुचुड़ा मठ से, और वहां से 30-40 मील दूर वहां से नई हाटी पार करके, हाँ उधर हाली शहर को पार होते हुए कचरा पड़ा इत्यादि, सवेरे से घूमते घामते घूमते घूमते शाम हो गई, 5 रुपया भिक्षा मिला। पहले मैं था क्या, आप लोगों ने सुना होगा जब पहले कैसे पोस्ट पर था और हमको ऐसा भिखारी बना दिया, सवेरे से चल रहा है काम और शाम तक 5 रुपया। और गुरु जी के चरणों में जब दिया तो अत्यंत प्रसन्न से, आज तक हमको इतना किसी ने नहीं दिया, आज इतना भिक्षा तुमको कहां से मिली, कैसे ले आया। मैं कृतार्थ हो गया। उसमें 5 रुपए में हमारा 4 आना या 2 आना कम था, तो हमने त्रिविक्रम महाराज जी से या बावन महाराज जी से 4 आना उधार लिया, पूरा करके दिया और उधार लेकर के उसको पूरा किया।
गुरु महाराज जी हम लोग कहा था
तो बावन महाराज जी से धार लिया उधार और लेकर के पूरा करके गुरु जी को दिया। और गुरु महाराज जी 5 रुपया भिक्षा, 5 रुपए में 1 महीना पूरे मठ का उस समय खर्चा चल जाता था। बतलाओ तो उनके लिए 5 रुपया क्या चीज है, मेरे लिए ही 5 रुपया क्या चीज थी उस समय, किंतु कितने उत्साह देते। एक समय में आसाम का एक लड़का था, उसका नाम था अनंग मोहन ब्रह्मचारी। सचमुच में अनंग ही था, बड़ा सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत लड़का था, किंतु उसको टीबी हो गई। वो बहुत सुंदर मृदंग बजाता था और बहुत सुंदर कीर्तन करता था। गुरु जी उसको बहुत प्यार करते थे, गुरु जी का सब रसोई बनाना, उनका कपड़ा धोना टोना सब सेवा करता था, उनका बिस्तरा लगा देना, मुसहरी लगा देना, खोलना टाँडना सब काम। तो वो जब बीमार पड़ गया तो सब लोग मठ के जितने हैं उसको घृणा करने लगे, जैसे ये तो इसके साथ रहने से हमको रोग हो जाएगा, किंतु गुरु महाराज जी ने उसको नहीं छोड़ा। उसके लिए उस समय में भी अब कितना रुपया खर्चा किया मैं नहीं जानता, तो उनके गुरु भाइयों ने उन पर इल्जाम लगाया, जैसे ये सब जो भिक्षा करके हम लोग लाते हैं आप लाते हैं, ये सब इसी के लिए खर्च कर देते हैं। खर्च सचमुच उन्होंने किया। अब बड़े वैसे थे आदमी, गंभीर आदमी, तो उसकी चिकित्सा के लिए मुझको मद्रास में भेजा। तो मद्रास से जबकि उस वहीं पर हरिनाम करते हुए कृष्णा मुझे बुला रहे हैं, राधा जी वृंदावन में मुझे बुला रहे हैं, और ऐसे कहते 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 चला गया। अद्भुत उस समय देखा, मैंने रियलाइज किया ये सचमुच में साधारण व्यक्ति नहीं था। यदि अजामिल एक नारायण नाम वो भी अपने लड़के के लिए कहा और ये सचमुच में कहा जैसे राधा कृष्ण हमको वृंदावन में बुला रहे हैं, और हा कृष्ण हा राधे कर रहा, हाँ महाप्रभु कर रहा है, गुरु जी को कहता क्या बाबा बाबा कर रहा है, उनका फोटो हमने उसके इसमें रख दिया, दिव्य चेहरा हो गया। डॉक्टर लोग नहीं समझ सके ये कैसे ये जा रहा है, इसमें तो बोलने की बात नहीं है, तो ये बोल कैसे रहा। तो उस समय मैंने उसके चरणों में निवेदन किया, ये प्रभु आप तो जा रहे हैं वृंदावन, आप वृंदावनेश्वरी और वृंदावन ईश्वर को आप मेरे लिए निवेदन करेंगे, गुरु जी से भी निवेदन करेंगे, मुझ पर भी दया करके वहां पर बुलाए, उनकी भक्ति अंततः हो, उनके प्रति भक्ति में हमारा आदर हो, ये तो हमसे प्राप्त। और कहते हा राधे हा कृष्ण कहते। तो मैंने गुरु जी को दिखाया, परिक्रमा हो रही थी नवदीप धाम की, परिक्रमा हो रही थी, कम से 20,000 लोग आए हुए थे, और गुरु महाराज जी का भाषण देने का था, सब कीर्तन उत्तम हो रहा था और भाषण देंगे। इतने में बाम महाराज जी ने हमारा पत्र लेकर के गुरु जी के हाथ में दिया, मद्रास से लिखा था। मैंने लिखा कि आपने हमको जो थाती दी मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका, मैं पात्र आदमी, आज वो इस तरह से आपका चित्र यहां पर रखा मैंने, और कृष्ण कृष्ण कहते हुए हा राधे हा कृष्ण कहते हुए, और हे राधा मुझे राधा और कृष्ण बुला रहे हैं, ऐसे कहते हुए वो
इस धराधाम से अपने प्रभु के पास नहीं चले, मैं नहीं रख सका, मैं लज्जा से आप ना मुख आपको दिखाने लायक नहीं रहा। गुरु जी पत्र पढ़ रहे हैं और रोक नहीं सके, सब हजारों लोगों के सामने एकदम फुटफुट करके रोने लगे। कितने भक्त बात कर रहे हैं हम कल्पना नहीं कर सकते, ये अनुभूतियां हैं जिनकी कृपा से एक साधारण व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं और हाँ राधे हाँ कृष्ण हमको बुला रहे हैं अंतिम समय में, ये कितनी बड़ी बात, उसकी क्या गति हुई होगी यदि आज आमिल की ऐसी गति है। हमने अपना जीवन कृतार्थ समझा, यह हमारा जीवन आज कृतार्थ है ऐसे महापुरुषों की सेवा करें, ये सब गुरु सेवक है। इसलिए आज जो कुछ हम बोलते हैं सुनते हैं विचार करते हैं बस ये गुरु कृपा है और वैष्णव की सेवा से है। ऐसे गुरु के प्रति हम लोग की दृढ़ निष्ठा हो, यही भक्ति का मूल कारण है। कितने ऐसे ऐसे सब हैं हृदय में सब गुथे हुए हैं माला की भांति, गुरु की महिमा हम कितना वर्णन करें। अब अभी समय भी हो चुका है, अभी दो चार बच्चे भी पांच पांच मिनट बोलेंगे, अब आप लोगों को जाने का समय हो गया है, इसलिए आप लोग जाइए और नहीं तो हम लोग भी अब कीर्तन करके नहीं समाप्त करना है तो दो दो मिनट बोलेंगे, आप जाइए जिनको जाना है। अभी ब्रह्मचारी लोग दो मिनट पांच मिनट अपनी पुष्पांजलि अर्पण करेंगे, इसके बाद धन्यवाद जिनको जाना है। आप लोग
আদিবাসী এবং জন্ম দিবসের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। জন্মদিবস জন্মমূর্তি চক্রের সাথে জড়িত, কিন্তু আদিবাসী স্বাতন্ত্রতা নির্দেশ হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং জন্মদিবস নিয়ে কি আছে? আবির্ভাব হচ্ছে দেবকী গর্ভ থেকে চতুর্ভুজরূপে যেন তিনি আবির্ভূত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিবস বলতে সাধারণভাবে নরবর যেভাবে জন্মগ্রহণের কার্যটি হয় সেইভাবে জন্মকে হওয়ার কারণে সেখানে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিবস বলা হয়। বর্তমানে সাধারণভাবে আমরা গুরু বৈষ্ণব গণের ক্ষেত্রে সেইভাবে জন্মগ্রহণ মিলাকে আমরা দেখি, তবে কি সেখানে আমরা আবির্ভাব দিবসের বদলে জন্মদিবস কথা দিই নির্দিষ্ট করাই কি উপযুক্ত হবে হবে নাকি? কিন্তু সমস্ত জায়গায় তো গুরু বৈষ্ণব গানে আবির্ভাব দিবস থেকে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ সম্ভবত এইরূপ। মহাদেবদেব নন্দ বাবা তার শ্রীকৃষ্ণের পরিকর নিত্য পরিকর এবং মাতৃপিতৃ ভূমিকার দ্বারা নিত্য পরিকর, কিন্তু গুরু বৈষ্ণব সাধারণভাবে মাতৃত্ব বদ্ধদের ধারকে প্রকাশ করে আছেন, সেখানে তারা যে পিতৃমাতৃকে যারা বরণ করেন তাদেরকে নিত্য পরিকর বলা যায় কিনা আমি সন্দেহ প্রকাশ করি। কারণ হিরণ্য কর্তৃপক্ষে দেখা যায় প্রহ্লাদ মহারাজের পিতৃদ, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ তিনি নিত্যদেবের পরিকর, হিরণ্য কর্তৃপক্ষ তিনি জয় বিজয়কে শ্রীমন নারায়ণের পরিকর। সুতরাং শুরুতে তাদের একত্র অবস্থান নেই, কিন্তু তথাপি নিলার খাতের এমন একটি সামঞ্জস্য ভগবান অসীম শক্তিভাবে হয়ে উঠে আমাদের মাতৃত্ব যোদ্ধা নিয়েছে তাদের যে অবতরণ সেটিকে নৈতিক ক্রীড়া বলা যায়। তার কারণ নিত্য না পবিত্র এই কথাটির দ্বারা তাদের এই উদ্ধার করণীলাটিকে নৈমিত্তিক লীলা বলছে। সুতরাং সেই নৈমিত্তিক লীলার খাতিরে তারা সাধারণত যে সমস্ত পিতৃমাতৃ বরণ যে কার্যক্রম সেইটিকে জন্মদিবস বলে ব্যাখ্যা করা যায় না, সেটিকে আধিবার বলাই যুক্তিসম্মত। শ্রী ব্যাস পূজায় আমরা শ্রীমন মহাত্মীয় মহারাজ এবং পূর্বপূর্ব বক্তাগণের শিখে শুনেছি নিত্যানন্দ প্রভু সেই ব্যাস পূজার মূল উদ্দাতা, এবং সেখানে নিত্যানন্দ স্বরূপে শ্রী গুরু মহাপ্রভু যে দুইটি বিশেষ ক্রিয়া সেটিকে পাচন্দ দলন এবং প্রেম প্রচার, পাচন্দ দলন আর প্রেম প্রচারণ এই দুই কার্য অবলম্বন করেন ভগবান। সুতরাং ব্যাস বিস্তার যে কার্যটি সেখানে একদিকে পাচন্দ দলন কার্যটি আছে, অপরদিকে প্রেম প্রচারণ কার্যটি আছে, দুইটি যুগপৎ চলছে। পাচন্দ দলন কার্যটি শ্রী ভক্তি পরিমাণ কৃষ্ণকৃষ্ণের মহারাজের পাচন্দ পাচন্দ দলন লীলাটি অত্যন্ত বিখ্যাত। তার নিদর্শন স্বরূপে তৎকৃত মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণবীগণ এবং অবিন্দ ভেদাবের এই দুইটি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখ করেছে। শুদ্ধতা একটি জানে